मित्रों, इन दिनों SBS पर चल रहा है फेस अप टू रेसिज्म सप्ताह, यानी जातिवाद नस्लवाद का डटकर सामना किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर ही चर्चा की जाए अनुपम शर्मा के साथ, जो कि फिल्मों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अपनी जानकारी हमारे साथ भी बांटते चले आए हैं। तो अनुपम, आपका SBS स्टूडियोज में स्वागत है।
नमस्कार कुमार जी, नमस्कार आपके सुनने वालों को भी। और ये बहुत ही अच्छा विषय चुना है आपने।
जी बिल्कुल, इन दिनों हर जगह हम देख रहे हैं चर्चा चल रही है जातिवाद नस्लवाद की, और बहुत लोग सोचते हैं कि वो निशाना बन रहे हैं जातिवाद का नस्लवाद का। लेकिन ये पूछूं कि क्या हमारी फिल्मों में भी जातिवाद के कई रंग दिखते हैं?
जी हाँ बिल्कुल कुमुद जी, दुर्भाग्यवश भारतीय सिनेमा जगत का एक बहुत ही शर्मनाक इतिहास है नस्लवाद और जातिवाद को अगर ध्यान में रखें तो। और ये जाता है उसी समाज में जिस समाज में जातिवाद और नस्लवाद काफ़ी प्रैक्टिस होता है।
जी
दुर्भाग्यवश क्योंकि ये नाक के नीचे होता है इसलिए लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अब ज्यों ज्यों भारतीय बाहर जाने लगे हैं, जिसे बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होने लगे हैं, त्यों त्यों उन्होंने इसको देखना शुरू किया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप और मैं भारतीय मूल के होते हुए ऑस्ट्रेलिया में जिनके लिए आपत्ति होगी हमको, या अमेरिका में आपत्ति होगी, वो भारत में आमतौर पे होते हैं। जैसे कि अपने फेस के ऊपर कालक पोत के कोई डार्कर कलर का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना, या किसी एक रंग का मजाक उड़ाना, चाहे हमारे गाने हों चाहे हमारे डायलॉग्स हों। इनके उदाहरण कई हैं और कई संख्या में हैं, और बिल्कुल आम, दुर्भाग्यवश ही आम बात है भारतीय फिल्म जगत में।
तो रंग भेद गानों में और वार्तालाप में, डायलॉग संवाद में भी दिखाई देता है।
बिल्कुल, और क्योंकि कहते हैं सिनेमा समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज का आईना होता है, तो जो हमारे समाज में होता है। अब वो इतिहास जहाँ कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, जहाँ पे हमेशा दानवों को डार्क कलर का दिखाया जाता है, और जितने कथित रूप से उच्च जाति के लोग हैं उनको गोरा दिखाया जाता है, तो ये सब चलता आ रहा है और वही हमारी फिल्मों में आ गया। चाहे वो गाने हों हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, या गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। लेकिन दुर्भाग्यवश फिर से ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है, ज्यों ज्यों आधुनिक विचारधाराएं भारतीय फिल्म जगत में आ रहे हैं, बजाय कम होने की और गहरा होता जा रहा है।
अच्छा, ये कैसे?
ये इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस भारत में बहुत कम है, और अभी भी ये नहीं माना जाता कि रंग भेद या नस्लवाद भारत में होता है। जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया या अमरीका में चिल्लाएगा नस्लवाद और रेसिज्म, वो इंडिया में ठाके लगा लगा के कुछ ऐसे कार्यक्रम देखेगा जिसमें काले रंग के या भूरे रंग के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप हमारी और आपकी दोस्त तनिष्ठा, जो कि अन इंडियन की लीड एक्ट्रेस थी, वो रिसेंटली एक प्रोग्राम से वॉकआउट कर गई क्योंकि उनके काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था।
अरे,
और काफ़ी विवाद में रहा ये, काफ़ी कुछ उससे चर्चा में बना कि क्यों डार्क एक्ट्रेसेस को मजाक में उड़ाया जाता है। सब जानते हैं पुराने ज़माने में हेमा मालिनी से लेकर तनुजा तक इतना गोरा रंग उनके फेस पे पोता जाता था कि जब वो डांस करती थी तो उनका पेट अलग गहरे कलर का दिखता था और फेस गोरे कलर का। और इसका कारण यह है कि जब भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना होता था भारतीय फिल्म में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या कथित रूप से, मैं हमेशा बोलूंगा कोई नीची और ऊंची जात नहीं होती, लेकिन एलिजिबली अगर दिखाना होता था कि नीची जात का है तो उसको डार्क कलर कर देते थे। और अब तो इतना गहरा हो गया, जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ फैशन फिल्म का, उसमें प्रियंका चोपड़ा भी थी जो क्वांटिको के मिली एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने, उनका एक सीन है जिसमें वो हास्यपद सीन उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, कि वो बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे लोएस्ट मोमेंट आ गया, अब तो मैं एक निग्रो के साथ शारीरिक संबंध कर लिए मैंने।
ओरे ओरे।
और ये खास बिल्कुल सामने है लेकिन कोई देखता नहीं क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। इस मामले में नम्रता जोशी हैं जो कि काफ़ी नामी लेखिका हैं, उन्होंने हिंदू के लिए भी लिखती हैं, तो उन्होंने एक हिंदू ने एक अपना स्टडी की थी 2015 में, उसके आंकड़े देते हुए बताया है कि पिछले 2013 और 2014 में 300 फिल्मों में से खाली 6 फिल्मों में जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो कथित रूप से ऊंची जात के नहीं है।
अच्छा, वरना हमेशा उच्च जाति के लोगों को गोरे मुख्य होते पात्र हैं, बनाया जाता है,
चाहे उनका सरनेम हो चाहे कुछ और। और भारतीय फिल्म जगत में नस्लवाद और जातिवाद, उसके दो वो हैं पहलू। एक पहलू तो ये है कि किस तरह वो डार्क कलर का मजाक उड़ाते हैं या कथित रूप से नीची जात को गलत तरीके से करते हैं, अरे तू तो भंगी है, तू तो चमार है, मतलब इसको गाली के तरीके पर इस्तेमाल किया जाता है दुर्भाग्यवश। वहीं दूसरी तरफ जातिवाद और नस्लवाद किस तरह अपने अंदर इनग्रेन्ड है उनका. सो ना सिर्फ वो प्रोत्साहित करते हैं या यू नो ना सिर्फ इसको आम बात बताते हैं बल्कि खुद भी किस तरह, फ्रीदा पिंटो सब जानते हैं जो कि स्लमडॉग मिलियनेयर की एक्ट्रेस है, वो बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तो दूर जहाँ पे डार्कर कलर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इंडिया में जब जाती थी अभी भी तो जब जाती हैं तो लोग हमेशा जो हैं उनको बोलते हैं अरे तुम तो स्लम से हो तुम्हें क्या लेंगे, और कितना नाम कमा रही हैं. तनिष्ठा चैटर्जी जो हमारी लीड एक्ट्रेस हैं, सबसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय एक्ट्रेस हैं, वो जब कई ट्रेलर्स रिलीज होते हैं तो हमेशा लोग यही आके करते हैं कि अरे आपने डार्क कलर की लड़की को क्यों ले लिया. हमें यूट्यूब के पास जाना पड़ा और कई कमेंट्स डिलीट करने पड़े जब अन इंडियन की वो लीड एक्ट्रेस थी और उनका वीडियो रिलीज हुआ तो सब यही बोल रहे थे कि आपने गोरे रंग की भारतीय एक्ट्रेस को नहीं रखा. मज़ेदार बात यह है कि वो मुझे और भारतीय मूल के और लोगों को नस्लवादी बता रहे थे, रेसिस्ट बता रहे थे, क्योंकि हमें भारत में कोई गोरे रंग की एक्ट्रेस नहीं.
अरे कमाल है.
तो इतना इंट्रेंच्ड है ये, बड़ी शर्म की बात है. लेकिन सौभाग्य है कि अब धीरे धीरे हिंदू जैसे पत्रकार जैसे पेपर्स और नम्रता जोशी जैसी लेखिकाएं, हमारे डॉक्टर विक्रांत किशोर हैं जो कि काफ़ी शोध करते हैं फिल्मों में मेलबर्न से, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और ये इतना इंट्रेंच्ड है कि शर्म आती है इसके बारे में डिस्कस करते हुए भी. लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो आने वाली नस्ल है अब इसको ओपनली इसके ऊपर वाद विवाद हो रहा है, इसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं. और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक ये भारतीय फिल्म जगत में इसका प्रतिबिंब.
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा फिल्में तो प्रतिबिंब है, आईना है समाज का. तो डांसर्स में भी ऐसा देखा जाता है ना अनुपम, कि जब उनको कोई वैम्प टाइप की या कैबरे डांसर दिखानी होती है तो भूरी आंखें और उसके बाल गोल्डन वगैरह दिखाए जाते हैं.
उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल 2017 में उस नस्लवाद को दिखाया जाता है बैकग्राउंड डांसर्स में. तो अगर आपके सामने बाहर करीना कपूर या कोई और फेयर कलर्ड एक्ट्रेस हैं तो उनके पीछे आप नोट करेंगे कि जितने आजकल आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई भारतीय मूल के बहुत कम लोग हैं, सारी विदेशी ब्लॉन्ड ब्लू आइड लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं.
रशियंस आई बिलीव,
रशियंस का बड़ा भारी एक ग्रुप है वहां पे जो कर रहा है. तो कहना ये है, कुछ दोस्तों से बात करता हूँ जो निर्माता निर्देशक हैं, उनका तो कहना है क्योंकि वेस्टर्न गर्ल्स हैं वो कम कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबली कैरी करती हैं.
अच्छा.
लेकिन वही हमारी जो आस है कि हम यू नो हम लोग इनका हिस्सा बने, हम लोग भी ये गोरी गोरी गोरे वर्ल्ड का हिस्सा बने. अच्छा. वो कहीं हमारी मानसिकता में इतना कूट कूट के भर गया है, चाहे वो यशोमती के गाने हों, चाहे वो बच्चों को चढ़ाने वाले जितनी हमारी लोक गाथाएं देख लीजिए, लोक संगीत देख लीजिए, हमेशा काले रंग को नीचा माना गया, गोरे रंग को ऊंचा माना गया है. तो ये विचारधारा धीरे धीरे बदलेगी तो भारतीय फिल्म जगत भी बदलेगा.
जी बिल्कुल. और नस्लवाद रंग भेद के खिलाफ कुछ फिल्में बनी हैं, जैसे कि फिल्म थी सुजाता, आप और भी नाम बता रहे थे कुछ.
जी हाँ, और जैसे मैंने बोला कि जो अपनी नस्लवाद के ऊपर जो फिल्में हैं, इस जो टॉपिक को जो अटैक किया है वो कई नामी गिरामी फिल्म मेकर्स ने बड़ी मार्मिक प्रदर्शन किया है इसका, चाहे वो सुजाता हो जो 1959 में बनी थी, उससे पहले मदुराई वीना वीरन बनी थी तमिल में 1956. अच्छा. में अंकुर सब जानते हैं. हाँ. 1974 में दलित दंपति के ऊपर थी. एक कन्नड़ फिल्म बनी थी चुमाना कुंडी जो बॉन्डेड लेबरर्स के पतन के ऊपर थी. सदगति सब जानते हैं, सत्यजीत रे की बड़ी क्लासिक फिल्म थी. पार सब जानते हैं, दामुल बनी, दीक्षा बनी, आने वाले कुछ सालों में 2011 में आरक्षण थी, फिर पिछले साल एक बहुत ही सुंदर फिल्म आई आजकल नेटफ्लिक्स पे चल रही है अगर भारतीय मूल के लोग देखना चाहें, जिसका नाम है मसान, जो कि फिल्म है एक ब्राह्मण लड़की के शारीरिक संबंध होते हैं एक एक कथित रूप से किसी और जात के लड़के के साथ. उनकी जो न्यूएंसेस हैं छोटे गांव में बनारस में रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है. इसके अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर पूरी फिल्म बनी थी 2000 में. फिर भारती कमन्ना बनी हिंदी में 1997 में, जो कि एक लव स्टोरी थी allegedly different caste के बीच में कथित रूप से ऊंची और लोअर का. तो काफी इस टॉपिक को अटैक किया जा रहा है.
जी,
लेकिन
जी.
अभी भी खुले में नहीं आ रही हैं ये बातें, और शायद इसलिए नहीं आ रही हैं कि भारतीय टीवी में आजकल आप जब भी आजकल एक नया प्रचलन हो गया है भारतीय टीवी में रोस्ट का, तो बिना सोचे समझे जो वेस्टर्न एपिंग होती है उसी के तहत एक भारत में रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। जैसा कि आप जानते होंगे अमेरिका में एक बड़ा भारी कॉमेडी एस्पेक्ट होता है रोस्ट का।
अच्छा,
जैसे कुमुद जी हैं, कुमुद जी का काफी सक्सेसफुल कैरियर है, तो कुमुद जी की अगर रोस्टिंग हो रही है तो चार पांच उनके उन्हीं के प्रोफेशन के लोग, व्यवसाय के लोग आएंगे और मजाक मजाक में उनके मजाक उड़ाएंगे।
ठीक।
और उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन कई लोग सीमाएं पार भी कर लेते हैं, लेकिन उसका एक टेस्टफुल रहता है। अब भारत में रोस्ट करना शुरू किया तो सबसे पहले काले रंग का मजाक उड़ाते हैं।
ओहो।
हर चीज में जरा जरा सी, जिसे बोलते हैं ना सटली, जो ये डालेंगे, अरे वो तो बड़ी काली काली थी, वो तो बड़ी गोरी गोरी थी। अब चाहे आप कपिल शर्मा के शो देख लीजिए, जिनके ऊपर काफी आपत्ति लोग उठा रहे हैं, या एक सैटरडे नाइट कॉमेडी नाइट लाइव आता है, उसको अगर लोग गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि हर बार कोई ना कोई विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब तक ये टीवी में रहेगा, टीवी में ना सिर्फ कार्यक्रमों में रहेगा बल्कि विज्ञापनों में रहेगा। सबसे प्रचलित विज्ञापन है, लड़की आती है, लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं, अरे फिर रिजेक्ट हो गई, तुम कुछ लगाती क्यों नहीं, क्रीम लगाई, सामने से गोरी हो गई, शादी हो गई। तो जब तक ये विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक सिनेमा कैसे बदलेगा।
जी बिल्कुल। तो आपका, आप इसका भविष्य कैसे देख रहे हैं?
भविष्य तो आपके हमारे बीच है और हमारे श्रोताओं के हाथ में है। इस सप्ताह जबकि हम इतना इम्पॉर्टेंट वीक मना रहे हैं, फेस अप टू रेसिज्म वीक, तो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन होने के नाते हमें सिर्फ बाहर नहीं देखना है कि हमारे साथ क्या रेसिज्म हो रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्या रेसिज्म
जी बिल्कुल।
तो अगर हम सब अपनी आवाज़ उठाएं और
अपने गरेबा में झांक कर
देखें, और आजकल सबके पास फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया इतना है, अपने तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं, तो कल को हम किसी को अगर रेसिस्ट बोलें, जिसे कहते हैं ना कि जिसने कोई पाप ना किया वो पत्थर मारे।
ठीक है, तो कांच के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते।
बिल्कुल।
बहुत ही दिलचस्प बातचीत की है आपने, और इस पर गौर करेंगे कि ना हम रेसिज्म करें ना किसी को करने दें।